excitement. Y'all will find out what we're saying.
कौन कैसा मरेगा
可我是看蛮按摩我没有这个机会的，有钱是爹在上面的，ये बात नहीं है कि एक आदमी मुसलमान है तो जब मरेगा तो मुसलमान मरेगा, ये जरूरी नहीं। कोई आदमी मुसलमान है तो मुसलमान मरेगा, ये जरूरी हजरत शेख ने बताई कि किताब में लिखा है अब जो कुछ आदमी पर नहीं है जो 60 साल तक बेईमान था और बेईमान था, कहता जो उस पर है जो 60 साल तक ईमान वाला था और बेईमान बन गया, 60 साल तक ईमान वाला था वह ईमान बन गया, कहता जो उस पर है। और वो आदमी जैसा जीता है ऐसी मौत आती है। हजरत शेख ने लिखा है पता की बात, एक आदमी की मौत आ रही है, लोग उसको कलमा पढ़ा रहे, जब उसको कलमा पढ़ाया तो वो कह रहा है 10-10 रुपए, 11-11 रुपए, 10-10 रुपए, 11-11 रुपए, ये क्या हो गया इसको, ये मौत का वक्त है इसको कलमा पढ़ा देगा, ये बोल रहा है। कर बात ये नहीं है, जिंदगी भर उसने इसी में गुजारी है, अब मौत की उसी हाल में आ रही है, कलमा जबान पर नहीं आ रहा। एक आदमी का वक्त लिखा तो उसको कलमा पढ़ा रहे हैं और वो क्या भी कह रहा है, शराब बजान तू भी पी, शराब बजान मुझे भी पिला, शराब बजान तू भी पी, शराब बजान मुझे भी पिला। तो ये मौत आ रही है, वो कलमा पढ़ा रहे हैं और उसे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा है, जिंदगी उसी मशवरे में गुजार रही है। ये बहुत डरने की चीज होती है, हर आदमी सोचे कि मेरा सुबह से शाम तक का मशवरा क्या होता है, लेकिन बातों को बोलता हूं, लेकिन बातों को सुनता हूं, किन बातों को सोचता हूं। हां, मौत के वक्त वही बातें अंदर से बाहर आती है, अंदर घुस जाती है, और जब बेहोशी आई थी तो बेहोशी में ओरिजिनल अंदर जो भरा हुआ है वो बाहर आता है। आदमी हॉस्पिटल में जाता है तो उसको ऑपरेशन करने के लिए बेहोश करते हैं, बेहोश करते हैं तो बेहोश करते हैं तो लोग बकना शुरू करते हैं, तो क्या बकते हैं, जिसके अंदर जो होता है ऐसा पकते हैं, कोई गन्ना करता है कोई गालियां पकता है, और कोई बेहोश करने के साथ अल्लाह रसूल की बातें शुरू करता है, कोई कुरान पढ़ता है, कोई दुआएं मांगता है। हमारे एक बार स्कूल के प्रिंसिपल थे मान के साथ, वो हमेशा कुरान नहीं थे लेकिन रोजाना एक मंजिल कुरान पढ़ते थे, एक मंजिल सांप पाए तो उनको ले गए हॉस्पिटल, जैसे बेहोश किया तो कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, दखल हो गए तो कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, जिंदगी भर उससे लगाव था। बाकी आप डॉक्टरों से पूछो कितने लोग गालियां बोलते हैं, बेहोश करते ही गालियां। हमने तो उन सबने आपने देखा होगा हमारे घर में, हम रात को सोते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, तो लोग नींद में बकते हैं, आपने नहीं देखा लोगों को बकते हुए, छोटे बच्चे बकते हैं, जवान बकते हैं, बुढ़े भी बकते हैं, तो क्या बकते हैं, जिसकी सुबह शाम जिस मशवरे में गुजरी हुई होती है वही बनता है। बच्चा छोटा क्या कहता है, अम्मी स्कूल नहीं जाऊंगा, अम्मी ये मारता है, ये अम्मी देखो नहीं मुझे परेशान करता है, छोटा बच्चा ऐसा होता है। ड्राइवर आती नींद में भी बोलता है आने दो जाने दो जाने दो, क्यों, तो उसने सुबह शाम इसी में गुजारे, मदरसे का बच्चा कौन पढ़ता है, मैंने देखा हमारे साथ मदरसे में एक बच्चा पढ़ता था, एक बच्चा कौन पढ़ा मदरसे में पढ़ता था, के बाद वो झोंके लगा रहे तो वो झोंकों में कुरान पढ़ना शुरू करे, एक पढ़ा दो तो हमारे पढ़ा ले, क्या पढ़ रहा है, एक ऐसे पढ़ रहा है नींद में, कहीं नींद में नहीं पढ़ा, इसने अपने इसके घूम में लगी, तो अब नींद में कैसा बोलता है, आपने देखा अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं, नींद छोटी बेहोशी, ऑपरेशन छोटी बेहोशी, और मौत मौत बड़ी बेहोशी। जब बड़ी बेहोशी होगी तो आदमी वही बोलेगा जिसने उसने रात्रि सुबह शाम गुजारे, ये बहुत गंभीर बात है। आदमी ऐसा सोचता है कि मुसलमान के घर में हूं बस कोई मसला नहीं, हाँ ये मसले की चीज है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं बोला तब नहीं तो मुस्लिम हो, तुम हमारे पास जब हो तो मुसलमान बन कराना, तो सवाल अच्छू होता है तो मुसलमान नहीं हो कैसे जाएंगे, अल्लाह कह रहे ना तुम्हें मुसलमान बन कराना पड़ेगा, मुसलमान बनते आ रहे ऐसा क्या मतलब कि इस्लाम को संभाल कर रखना पड़ेगा, ये खराब नहीं होना चाहिए, और इस्लाम को और ईमान को संभाल कर मौत तक ले जाना पड़ेगा, वरना आदमी का ईमान और इस्लाम पता नहीं कहां उसे हासिल कर, इसको दोहराते रहना पड़ेगा, ताजा करते रहना पड़ेगा। حضرت شیخ نے بدل کے کتاب میں لکھا ہم صرف کتاب کے تعلیم میں بیٹھتے نہیں ہاں اور سنتے بھی. اس نے عجیب غریب باتیں لکھی, اس میں لکھا ہے کہ یہ ایمان ایسے پیدا ہو جاتا ہے جب بھائی اوپر جو بچے ہیں ان سے گزارش ہے بھائی خاموش ہو جائیں, بھائی اوپر جو لوگ ہیں ان سے گزارش ہے بھائی خاموش ہو جائیں, بہت آواز ہے ہم لوگوں کی, بھائی ایسا نہیں کرتے. بھائی اللہ کا گھر ہے, یہ کوئی تماشے کی جگہ تھوڑی ہے. یہ ایمان کیسے میلا ہو جاتا ہے, جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, اور جب کپڑے میلے ہو جائیں تو اس میں خوشبو آتی ہے کہ بدبو آتی ہے, بدبو آئے گی. حضرت شیخ نے لکھا کہ یہ ایمان بھی ایسے ہی میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, اور جب کپڑوں میں سے بدبو آتی ہے ایسے ایمان والا بھی جب اس کا ایمان میلا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. کیا ہوتا ہے جب اس کا ایمان میلا ہوتا ہے, آنکھیں گندا دیکھنا شروع کر دیتی ہے اور اس کو وہ برا نہیں سمجھتا, اس کا کان گندا سننا شروع کر دیتا ہے اس کو برا نہیں سمجھتا, اس کا دل دماغ غلط باتیں سوچنا شروع کر دیتا ہے اس کو برا نہیں سمجھتا, برائی کو برائی نہیں سمجھتا, اس کا ہاتھ پیر کو غلط استعمال کرتا ہے ہاتھ پیر غلط استعمال ہوتا ہے اس کو برا نہیں سمجھتا. حالانکہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایمان والے کو اس کی نیکی خوش کر دے, یعنی سطرت کا حسن ہو, اور اس کی برائی اس کو غمگین کر دے کہ اس کی یہ برائی ہو گئی. وَإِذَا أَصَابَتْكَ سَيِّئَةٌ فَمَنْ تَمَنَّى, اگر کسی کو یہ احساس ہے نیکی کے اور اس کو خوش کر دے اور اس کی برائی اس کو غمگین کر دے تو یہ اس کی ایمان کی نشانی ہے. اگر ایک آدمی نیکی کر رہا ہے اس کو کوئی خوشی نہیں ہو رہی اور ایک آدمی سے برائی ہو رہی ہے اس کو کوئی احساس نہیں ہو رہا تو یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے کہ مجھ سے برائی ہو جائے گی اور مجھے اس کا احساس بھی نہیں ہے. کتابوں میں حضرت شیخ نے بتایا کہ کتاب میں لکھا ایک آگے کی بات کیا لکھی کہ ایمان والا گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے اس کے سر پر پہاڑ آ گیا ہو جو اس پر گرے گا اور یہ اس کے نیچے دب جائے گا, اور منافق گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے مکھی بیٹھی اور بڑا دن پتہ بھی نہیں چلا. یہ بڑی بڑی گمبھیر بات ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرے پاس تمہیں ساتھ جانا, تمہارے ساتھ گناہوں کا پلندہ نہ ہو, گناہوں کا ٹوپلا نہ ہو. لب کے الگ ہو ایمان نہ ہوں ضرور بھی کہ تم ایمان والے تو ہو لیکن یہ کوئی ایمان والا ایسا نہ آئے کہ ایمان بھی ہے چوری بھی ہے, ایمان بھی ہے غیبت بھی ہے, ایمان بھی ہے زنا بھی ہے, ایمان بھی ہے مسلمان کی جان مال کو نقصان پہنچانا بھی ہے. یہ خطرناک بات ہے. اللہ کہتے ہیں ایسا ایمان تو صحیح ہے کہ ایمان بھی ہے چوری بھی ہے, ایمان بھی ہے قیمت بھی ہے, ایمان بھی ہے محتاط بھی ہے, ایمان بھی ہے بدنظری بھی ہے, اور ایمان بھی ہے زنا بھی ہے, اور ایمان بھی ہے اور مخبری بھی ہے مسلمان کی جان مال کو نقصان پہنچانا بھی ہے. کیسے ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے؟ یہ بہت خطرناک مرنا ہے. وہ تو موت تک پتا چلے گا کون کس حال میں مر رہا ہے. ابھی لوگوں کی موت آتی ہے نا تو لوگوں کو کلمہ تسلیم کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سو میں دس بھی ایسے نہیں ہوتے جو زبان سے پڑھتے ہو شرم لا الہ الا اللہ وشرم محمد رسول اللہ, میں بھی بہت سب کلمہ تسلیم کیا ہوتا. اول نمبر کا مسلمان وہ ہے کہ جو موت کے وقت اپنی زبان سے کلمہ تسلیم کرے اعلیٰ درجہ کہ ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ وشرم محمد رسول اللہ, اور اس کے چلو اس کو خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی اس کو دیکھا دے تو وہ پڑھ لینا چاہیے. دوسرا نمبر تو یہ کہ کوئی یاد دلا دے تو پڑھ لے. بھائی دس آدمی بیٹھے ہیں شروع اللہ علیہ اللہ علیہ کام میں نہیں پڑھ رہے لیکن اب پھر بھی نہیں پڑھا جا رہا. ایک ایک کوالٹی وہ ہے ایمان والوں کی جس کے متعلق یوں لکھا کتاب میں حضرت شیخ نے کہ بعض ایمان والے وہ ہیں کہ جن کو اللہ پھر فرشتوں کے ذریعے سے کلمہ پڑھوا دیتے ہیں, فرشتے تسلیم کر دیتے ہیں, لیکن ہم کو کیا پتا کہ ہم اس میں ہی کیوں نہیں ہے کہ صبح سے شام تک افضل میں گزرے ہو تو پتا نہیں میرا مرنا کیسا ہوگا. اس لیے بہت ڈرنے کی چیز ہے. تو یہ جو ماحول ہے نا وہ ماحول ہمیں ایسا کر دیتا ہے. اس کے لیے یہ جمع میں ان کو فکر لگائی جاتی ہے کیونکہ موت اچانک آ جائے گی. موت کا کسی کو نہیں پتا, موت کا کسی کو نہیں پتا, اچانک آ جائے گی. ایک کرونا کا زمانہ تھا, हम लोग कोविड सेंटर में जाते थे तो हमने देखा कि ऐसे आज सुबह एक मिनट में आदमी चलाया जाता था। हमारे यहाँ कतल नहीं थे बदाम, तो मैं तहसीलदार दाखिल हुआ, वो बैठे हुए थे, मुझे कहने लगे कि मुझे पेशाब कर आ रहा है, तो मैंने वो पेशाब से कहा कि पेशाब कर आ रहा है। फिर उसके बाद वो कहने लगे मुझे अपने घर वालों से थोड़ी बात करनी है, तो घर वालों को बुला लो। तो वो कह रहे हैं मेरे से अभी पेशाब नहीं होता। मैंने कहा ऐसा करो, लेट जाओ और लेट कर पेशाब करो, आपके साथ थैली लगी हुई है। तो मैंने उनको लिटा दिया और मैं अभी लिटा कर ऊपर से भी चढ़ा, मेरे पीछे का आदमी दौड़ कर आया गंगा लेकर। इतनी सेकंड का खेल, यू राउंड में जाते थे वापसी में तो जरा दौड़ रहा हूं, यह हाल था। पानी के पथपोड़ी की जरा जिंदगी है, शैतान आदमी को ये उम्मीद नहीं दिलाता है कि ना अभी तो बहुत तेरा जीवन बाकी है, अभी तो आराम से जी, कोई मसला नहीं, तेरा बहुत जीवन बाकी है। ये शैतान उसको उम्मीद दिलाता है, तस्वीर तो अपने शैतान, अभी नहीं तुझे बहुत जीवन बाकी है, कोई बात नहीं, तो अभी आराम से रहे। हालांकि उसका मौत का वक्त करीब आ चुका था, ये 15 शैतान आएगी, जिसका 15 शैतान नहीं थे ना, तो सबके मौत तय हो गई थी किसको कब मरना है। 15 शैतान ने हम सब ने इबादत की थी, हम सब ने इज्तिमाई तौर पर की थी, तो उसमें ये सब जितने स्थान वाले उन सबका औचक फट चुका था, उन सबका औचक बोलो फट चुका था। किसी को पता था कि हमारा औचक फट चुका है? किसी को भी नहीं पता था। कोरोना में कितने चले गए, एक आदमी को भी नहीं पता था कि हमारा भी इस 15 शैतान का औचक बोलो। और अभी 15 शैतान को 2-3 महीने बाकी है, कि जब जो रोखना है उसके बाद रजब आएगा, उसके बाद शाबान आएगा, अभी 1.5 महीना बाकी है। तो 1.5 महीने में 15 दिन भीतर कितने जाएंगे, कहने वाला भी जा सकता है, सुनने वाले भी जा सकते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि हमारा वाउचर फटा हुआ है कि नहीं। जैसे मैं अंदर शहर में देखा, हर आदमी अपने आपको मोड़ों में समझे कि मैं हो सकता है इसी साल मुझे मरने में वालों में ना हूं, तो लाभ में धोखा कर लूँ, इस्तीफा कर लूँ, करने की चीजों में लग जाऊं, माफी मांगने की चीजों में माफी से लग जाऊं। तो एक तो ये कि आदमी चौकन ना हो जाए। हजरत शेख ने लिखा दो बातें, उसी किताब में लिखा, क्या लिखा, अपने को मुर्दों में समझे हो, कि हो सकता है इस साल के मैं मुर्दों में हूं, और दूसरा ये कहा कि जिसको जो कर्म करने का मौका मिले इसको आखिरी समझ कर ले, हो सकता है इतना जुम्मन न रहे, आज की जुम्मन मिले पढ़ लो, हो सकता है इतना जुम्मन न मिले, इसलिए जिसको जब कोई काम करने का मौका मिले उसको चूक ना करे, उसकी चूक न करे, हो सकता है असर पढ़ने का मौका न मिले, तो संकट आने हुआ पढ़ लो, हो सकता है मगरिब का पढ़ने का मौका न मिले। आदमी ये ना उम्मीद करे कभी बहुत लंबा जीना है और अभी कोई बात नहीं, बात न कर लेंगे, अचानक परपोटा फूट जाएगा, बबूला फूट जाएगा, इसलिए अपने आप को पाबंद रहे। ये याद ध्यान इस वजह से की जाती है, जो माता बहन होता है हर आदमी चौकन ना रहे, ये नफरत की दुनिया है, उसमें नफरत न करे, एक अपने लिए, दूसरा ये जिसम के लिए कितनी मेहनत करें, अल्लाह ने नबी से फरमाया इतनी मेहनत करो कि ये जिसम आग में जलने के लिए नहीं है, कि मेरा जिसम आग में नहीं जलना चाहिए। खूब अनफोसक हूं कि अपने साथ पर इतना रखाव के कबर में जाए तो याद में न चले, इतना हर आदमी अपने ऊपर ध्यान रहे। दूसरा का दूसरा अपने घरवालों पर ध्यान खाओ, अल्लाह के अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने घरवालों की फिक्र करो, हम अपने घरवालों पर ठीक नहीं देते। अल्लाह की बात करता लिखा, हर आदमी से उसके मातहतों का सवाल होगा, हमारा मातहत हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं, हम उनके दुनिया की फिक्र करते हैं, उनके कपड़े लगते हैं, उनकी गमी खुशी सब चीजों की फिक्र करते हैं, हमारे बच्चों के दीनी फिक्र हम नहीं करते, हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, अपने बच्चों को हम टाइम दें, हम रोजाना घर में शेड्यूल बनाए, ये काम ये वक्त मेरे कारोबार का, ये वक्त मेरा फला का, ये वक्त मेरे घर का, उस वक्त में घर में टाइम दो और बच्चों से घर जगह पूछो, बेटा कैसा हो, ठीक हो, आज स्कूल मदरसा ये सब जगह पूछो, लेकिन प्यार से ऑडिट की तरह नहीं, उससे बच्चे डर जाएंगे, भाग जाएंगे। हाँ हम भी जब छोटे थे अब्बा क्या देखते थे, सब भाग जाते थे कि पैसा देना पड़ेगा, बच्चों को हर प्यार से लेने की जरूरत है। बाय ऑर्डर डिक्टेटरशिप, बाय ऑर्डर कोई चीज नहीं चलती, जानवर भाग जाता है, जानवर को लकड़ी दिखाओ जानवर भाग जाता है। अक्सर हमारे बच्चे इसी से हमसे भाग चुके हैं, हमारे बच्चे हमारे दोस्त नहीं है, हमारे बच्चे हमारे दोस्त। एक अभी मैं मजमून पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा अपने बच्चों को दोस्त बनाकर बचा लो, अपने बच्चों को दोस्त बनाकर क्या करो, बचा लो, वरना दूसरे लोग दोस्त बनाकर बर्बाद कर देंगे। कोई ना कोई तुमको दोस्त बनाने वाला ही नहीं बनाने वाला, कोई ना कोई तो दोस्त बनाएगा, अगर हम दोस्त नहीं बनाएंगे तो कोई ना कोई बनाएंगे, तो वो उसको लेना था अपने बच्चों को दोस्त बनाकर बचा लो संभाल लो, वरना दूसरे को दोस्त बनाकर उसको बर्बाद कर दो। पता नहीं कैसे कैसे लोग तो उनके कंधे बना रहे बेटा कैसे वो ठीक हो खड़िया रहे उसमें 19-20 तो गाली ना रहे इतना प्यार बदल दे कि उसका हीरो हो गया उसका दिल हो जाए कि मेरे अपन कह रहे हमारे यहाँ शहर में एक बच्चा था उसके अपन उससे बहुत आगे जा चुके हाथ जोड़ गए रोते थे फिर वो बच्चा एकदम संभल गया और अभी 4-4 महीने की जमात का आगे बढ़कर जाता है। मैंने उनसे एक पता पूछा कि क्या हुआ कि मैं जब घर में जाता था दफा मुझे आंखें नहीं दिखते थे और मानो ही बात करते थे तो मैं भी सामने हो गया और फिर अमर चलते थे जो जब तक उनकी ताकत चली उन्होंने मुझे टेंशन में रखा जब वो कमजोर हो गए तब मैं रखता हूं। फिर एक मतलब मेरे पास मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा बेटा आज से अपने दोस्त हैं और मुझे बेदुरी की पट्टी पड़ने गए और मेरे सामने रो दी तो मैंने कहा बस अब मैं चेहरा डाल देता हूं। तब से मैं अब्बा का फरमानबरदार हो गया अब तो मशीन गाड़ी होता है अब 4-4 महीने हमने ये माहौल घर में खत्म कर दिया। हम घर में जाते हैं कोई को भरता है कोई को भरता है जैसे पुलिस वाले वैसा करते हैं हम कौन हम पुलिस वाले हमसे हमारे जैसे हम घर में जाते थे जितना माल बच्चों को देते थे हमारे जमीन से हम घोड़ा बन जाते थे और हसन और हुसैन को यहां बिठा देते और घर में गोल गोल घूमते थे इतना भरा देते प्यार करते थे उनकी नवासी हजरत ओबामा को यहां बिठाकर बाहर लेकर घूमने जाते थे। हम घर में जाते ये हमारा माहौल है इससे हमारा घर हमारे जीवन में शरीक नहीं होता तो हमारे घर बर्बादी पर पड़ चुके हैं। इसलिए दूसरी गुजारिश है कि एक तो अपने साथ की फिक्र कि हम अपने आपको अमान लगा रहे हैं दूसरी फिक्र देखो कितना गंदी फिजा है कितना गंदा माहौल है उस माहौल में अगर हम अपनी बात नहीं चलाएंगे तो वो माहौल हमारे घरों में घुस जाएंगे। इसके लिए दूसरी बात कि अपने घरों को टाइम दें हर घर में टाइम दें थोड़ा उनके साथ पूछें और सबसे ज्यादा अच्छा हम अपनी घरवाली को रखें। घरवाली को क्यों रखना है घरवाली को इसलिए रखना है उससे हमारी नस्ल चलेगी हमारी बीवी से हमारी औलाद चलती है ना उसके पेट में बच्चा बनता है हमारे पेट में थोड़ी बनता है तो उसको हम जगह ना बनाते उसको हम कीर्ति ना बनाते उसके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहकर उसको ऐसे बनाए कि बच्चे जो है वो माँ की डगर पर होते हैं माँ की नकल पर होते हैं। अपने किसी को गुजरते हैं पूछते हैं तेरी भाषा कौन सी है क्या पूछते हैं तेरी मातृभाषा की पितृभाषा क्या पूछते हैं तुम्हारी मातृभाषा कौन सी ऐसा पूछते हैं अरे भाई उससे बाबा की कोई अलग भाषा है क्या ना छोकरे तो माँ की बोलते हैं अंग्रेजी में पूछे तुम्हारी मदर टंग तुम्हारी मातृभाषा को ऐसा पूछा है मदर टंग तो बच्चे की बोली जो होती है वो माँ की बोली होती है माँ जैसा करते थे देखे कि ऐसे बच्चे करेंगे ऐसे बाबा ने देखा माँ को ज्यादा नहीं होना चाहिए तो हम बीवी के साथ सबसे ज्यादा लड़ते हैं जिसके साथ सबसे ज्यादा अच्छा रहना है उसी के साथ सबसे ज्यादा लड़ते हैं तो हम अपनी बीवियों के साथ नरमी के साथ रहें वहां माओ उनके साथ क्योंकि उसने हमारी बात में भी वो अपने बच्चों को बना लें इसलिए दूसरा हमारा सबसे बड़ा जो जरूरत की चीज है वो अपने घर वालों का माहौल बनाना। इसीलिए क्या होता है घर का माहौल बनाने के लिए नफल इबादत है घर में करो नफल नमाज घर में पढ़ो नफल कुरान घर में पढ़ो हाँ घर में माहौल बनाओ तो उससे घर का माहौल बन जाएगा। और कोई 19-20 हो जाए तो गाली ना दे मुसलमान गाली नहीं देता मुसलमान गाली देगा अल्लाह के गांव से घेर जाता है हमारी बात ही गाली से शुरू हो जाती है। अब हमारे लंदन में छोटे बच्चे ये सीखते हैं गाली देना देखो अभी मस्जिद में कितना तमाशा किया है ये हम भी ऐसा करके पड़े हुए और वो भी ऐसा कर रहे हैं हमने मैं भी अपने बचपन में मस्ती करता था तो हम अपने बचपन में मस्ती करते हुए पड़े हुए अभी हमारे छोटे भी मस्ती करते हैं उन्हें नहीं पता कि अल्लाह का घर कैसे रहने की चीज है कितनी खतरनाक वही है मस्जिद में बातें करना। लेकिन चूंकि ये हमारा सिस्टम चलिए हम बड़ों से इसको छोटों को ये नहीं मिला इसलिए दूसरी कोशिश इसकी करनी है कि घर में प्यार मोहब्बत के साथ माहौल बनाए तो इंशाल्लाह हमारे इस गंदे माहौल में हमारे घर बच जाएंगे। दूसरी बात तीसरी बात ये हमारे मोहल्ले का माहौल बनाए क्योंकि अगर मोहल्ले का माहौल ही बनना चाहिए हमारा घर चलना भी अच्छा हो जाए मोहल्ले में जो फिजा बनेगी वो फिजा हमारे घर में आएगी। भाई मोहल्ले में कीचड़ आया तो हम उस मोहल्ले से आएंगे तो हमारे चप्पल में तो कीचड़ आएगा ही आएगा गोबर पड़ा होगा तो हवा आती है तो हमें गंदगी का बदबू आती है गंदगी की बदबू आती है वो गंदगी बदबू सब घरों में घुसती है तो उसमें मस्जिद हो तो ऐसा कहेंगे वो बदबू के यानी तो अलग घर यानी घुसना कर लेकर निकल जाए ऐसा कहेंगे करना हमारे यानी हड़कों की मिले थी तो वो वहां चले तो हमारे मस्जिद में भी बदबू आती थे जमात आई हुई थी तो कहने लगे हमको यहां से मस्जिद बदल दो हमको बहुत बदबू आती है वाला हड़कों की भी यहाँ है ये मजावर रोड पर और बदबू वहां आती थी
वो मस्जिद में भी जमात पढ़ाता हो रहा है, उनको चेंज करना पड़ा, उनको उल्टियां होने लगी। तो जब बदबू आती है तो किसी को बख्शती नहीं है, न अल्लाह के घर को बख्शती है, न मौलवी साहब के घर को, ना अमीर साहब को, ना कादिर साहब को। तो बेदी भी के बदबू मोहल्ले में आएगी तो वो कोई किसी के घर को बख्शेगी नहीं, वो सबके घरों को पकड़ लेगी। सबसे बड़ा घर अच्छे से अच्छा कौन था? मक्का, बैतुल्लाह सबसे बड़ा घर है ना। एक ना वाला बैठ मोदी अली ना, अल्लाह कहते हैं वो हिदायत का मरकज है, मरकज हिदायत का, वो अल्लाह की परस्तिश होती है, अल्लाह के अलावा किसी की बात नहीं। लेकिन हमारे नबी अलैहि सलाम से पहले 600 साल तक कोई मेहनत करने वाला मान लिया है, तो वहां लोगों ने गुदपरस्ती शुरू कर दी। वो गुदपरस्ती ऐसी बड़ी 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 के बढ़ते बढ़ते काबा भी नहीं बन सका, काबा के अंदर भी घुसे कितने को घुसे, एक दो कितने घुसे जरा जोर से बोलो, 360 फुट काबा जैसे काबा में घुस गए। भाई किसने रखे? आसपास का माहौल था, वो माहौल आते आते अंदर घुस गए। जब काबा जैसा काबा नहीं बन सकता, मेरा मोहल्ले कैसे बच जाएगा? इसलिए अपने मोहल्ले में इसकी फिजा बनाओ। क्या फिजा बनाओ? कि हमारे मोहल्ले में बुराइयां ना हो, हमारे मोहल्ले में गाने ना बचे, कोई बजाए उसको प्यार से कहो भाई अल्लाह के मोहल्ले में गाने नहीं बचेंगे। अल्लाह के फरमाया मैं गानों को दुनिया से खत्म करने के लिए आया, मैं म्यूजिक को खत्म करने के लिए आया। फौरन उसके पास फिर मोहब्बत से बैठक, जवानों की मोहल्ले में बैठक ना हो, वरना जहां लड़का लड़की जमा होंगे तीसरा शैतान आ जाएगा। अपने मोहल्ले के होना हमें उसमें रहना है, वरना अगर हमने इसकी फिक्र नहीं की तो यहाँ जो कीचड़ आएगा ना, वो कीचड़ हम सबको लपेट में लेगा। किसकी बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन, कोई ना कोई लपेट में आएंगे। जाएंगे लड़का लड़की जमा होने वाला तीसरा कौन होता है बोलो? कैसा होता है बताया आपको? एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लम के घर में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला गए और अपनी बेटी हजरत आयशा से बातें कर रहे थे। अबू बकर सिद्दीक कौन है? सिद्दीक। और वो कौन है? सिद्दीका। वो दोनों बातें कर रहे थे, इतने अल्लाह के नबी आए, दोनों को अकेले में बातें करते देखा तो क्या फरमाया? अच्छा तुम दोनों अकेले बातें कर रहे हो, एक कौन है सिद्दीक एक पर और एक है सिद्दीका। लेकिन हजरत ने फरमाया काश तुम दो के बीच में तीसरा कोई आदमी होता, मतलब ये दो भी अकेले ना रहे, कितनी गंभीर बात है। एक मतलब एक सामने बाजार जा रहे थे तो देखा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला दरवाजे की चौखट पर बैठे हुए, तो कभी ऐसे बैठते नहीं थे, तो उनको पूछा आप तो कभी ऐसे नहीं बैठते हैं तो बैठे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में मेरी बेटी हजरत हफ्सा, वो लेकिन मेरे सर की घरवाली है, वो आई हुई है लेकिन अकेली है, तो दिल नहीं चाहता कि मैं अंदर जाऊं अकेला, तो इसलिए दरवाजे पर बैठा हूं। वहां पर दिखरी कोई सोच सकता है? हर उम्र तो वो आती है कि जहां वो पहुंच जाए वहां से शैतान भाग जाता था, लेकिन अकेले नहीं रहते। मोहल्ले में हमारा कोई जवान ना बैठे, उसकी हमारी भी हो, यह बैठक करने की जगह हमारे मसूरात है। हम सब इज्तिमाही माहौल बनाए, हम सब इज्तिमाही, उसके लिए रोजाना घर घर की मुलाकातें हैं। वो ऐसी ताकतवर मेहनत है, घर घर की मजेदार जीवन के जरिए से मुलाकात, हर घर में जाओ और बात करो, हर घर में जाओ और बात करो। तो हमारा घर मदीने के नक्शे पर, और यहाँ दरमियानी किस्म के लोग रहते हैं, ज्यादा गरीबी नहीं, ज्यादा बहुत मानदार भी नहीं। इनके अंदर बात कबूल करने का बहुत बड़ा जज्बा होता है। नबियों का साथ देने वाले गरीब लोग होते हैं, नबियों का साथ देने वाले कौन होते हैं? गरीब लोग होते हैं। हमारे नबी ने अल्लाह से दुआ की कलम दे गरीब है, अल्लाह जान ले मिस्किन, वो अक्षर ने भी तुम्हारे दिल मसा किया, उनने बात, उनके अंदर घबड़ नहीं होता, तकबर नहीं होता, ना लंबी का मसला नहीं होता, वो जल्दी हक को कबूल कर लेते हैं, हक को जल्दी वही कबूल कर। जब हफ्सा साहब ने हिजरत करके गए तो वहां के बादशाह ने पूछा तुम्हारे नबी का साथ देने वाले लोग कौन है? तो उन्होंने कहा गरीब है। तो उन बातों के बाद सुनने के बाद कहा कि जब तुम्हारे नबी सच्चे हैं, क्या नबियों को साथ देने वाले गरीब लोग होते हैं, तो यहां दरमियानी किस्म के लोग रहते हैं, तो तुम्हारी बात जल्दी यहां चलेगी। ये बड़े बड़े पत्रों वाले जल्दी नहीं सुनते हैं, ये सेठिया वेठिए सलमान चौधरी वाले वो जल्दी नहीं सुनते हैं, लेकिन दरमियानी किस्म के दिल नरम होते हैं, अपने बातों को जल्दी लेते हैं। तो जितना जल्दी तुम्हारा माहौल बनेगा और कॉलोनियों के मुकाबले में यह जल्दी से आसानी से आ जाएगी। इसलिए अपने रिश्तों को मजबूत बनाए ताकि माहौल बने, अपने रोजाना की मुलाकात का निजाम मजबूत बनाए ताकि माहौल बने। बेदीनी को घुसने की जगह बाकी ना रखो, बेदीनी को घुसने की जगह ना रखो, सब पैक कर डालो, ऐसी मुलाकातों का निजाम बनेगा, सब पैक हो जाए। जब घर सारे बंद हो जाते हैं ठंडी में भी घुसेगी, सारे सुराख बंद। तो ये हमारी बुनियादी चीजें हैं इस जमाने की, हमारा माहौल मजबूत बना ताकि गलत चीजें अंदर ना घुसे। हाँ गलत चीजें घुस चुकी है, लेकिन हमारे बच्चों ने बाल आड़े उड़े करने की जगह दिए, कैसे घुसेंगे? पता नहीं कहां से फैशन चल गई और हमारी गलियों में आ गई, हमारे बच्चों के कपड़े बदल गए, बच्चों के कपड़े पता नहीं कहां से फैशन चल गई और यहां आ गई हमारी गलियों में, हमारे मोहल्ले में नहीं आ गई। तो इसका कोड क्या, इसका कोड क्या है, उसके सामने लड़की मेहनत शुरू कर दो तो हम महफूज रहेंगे, इस्लाम पर जी सकेंगे, इस्लाम पर लड़ेंगे, वरना डर यह है कि हम पता नहीं दुनिया से कैसे जाएंगे। इसलिए ये जुमा में जो बात होती है, दीन की मेहनत जो की जाती है उसको असमत से रहें और अपनी मदद का इसको सामान समझें। हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम पर जीना चाहते हैं और हम इस्लाम पर मरना भी चाहते हैं, हम इस्लाम पर मरना भी चाहते हैं, उसके असबाब रहने पड़ेंगे। एक आदमी असबाब इख्तियार में करे और एक ये भी हो जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा, खाना ना खाए और पेट भर जाए, शादी ना करे बच्चे हो जाए, दाने ना डाले और घर सूख जाए, उसके असबाब इख्तियार करने पड़ते हैं। तो हम सबकी इज्तिमाई निगरानी की चीज है इंशाल्लाह। और तीसरी जगह आखिरी बात मुझे आज करनी है कि अभी देखो एक अमल बनने वाला है पतंगबाजी का, ये घरों के तत्पर है, हम सब इज्तिमाई तौर पर तय कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह घरों की मशाबहत नहीं करेंगे और कोई करेगा तो उसको समझाकर करने नहीं देंगे। सब तय करते हो इंशाल्लाह, हम मोहम्मदी है, मोहम्मदी रहेंगे, हम कौन है बोलो और कैसे रहेंगे, ना हम बुराई करेंगे ना बुराई, उसके लिए समझाने की मेहनत करेंगे। दूसरा भी दुनिया आने वाला है नया साल, उस पर लोग फंक्शन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, पार्टियां करते हैं, हम नहीं करेंगे। हमारे हजरत हमीर अब्दुल्ला जी फरमाते थे जनवरी जानवरों का महीना है और मुहर्रम मुहतरम लोगों का महीना है। जनवरी जनवरों की जनवरी की शुरुआत किससे होती है, मतलब जानवरों के लिए, जिसको पेशाब करने भी नहीं आता, खड़े खड़े पेशाब करते हैं, ये जानवरों की शुरुआत नहीं है, हमारी शुरुआत नहीं है। और मुहर्रम किसकी शुरुआत है, मुहतरम लोगों की, बाइसत लोगों की, हमारी शुरुआत तो मुहर्रम से होती है। हाँ हम स्कूल में रहते हैं इसलिए हम इसका भी इंतजार करेंगे, बाकी हम उनकी तरह नाचेंगे गाने के कर जो करें वो करें। हमारा चूंकि वो ईसा इस्लाम से शुरू हुआ है, किसे शुरू हुआ है, ईसा इस्लाम से, तो ईसाई लोग बनाते हैं। हमारा साथ तो हुजूर की हिजरत से, हमारा साथ किसे है, वो लोग हिजरी, उनका ईसवी, हमारा कौन सा लोग हिजरी, हम तो मोहम्मदी है तो हम उसके लिए आए करेंगे। इंशाल्लाह तीसरी बात यह है कि हम किसी मुसलमान के जानमाल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो मुखबरी होती है ना, बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज, सख्त सजाओं को दी जाएगी जो मुसलमान के जानमाल को नुकसान पहुंचाता है। हमें कोई खरीद नहीं सकता, हजार रुपए में, दो हजार में, मैं इतना सस्ता माल नहीं हूं, इतना बिगा माल नहीं हूं, मुझे कोई 500 रुपए में, 1000 रुपए में, 2000 रुपए में निकले, मैं ये पैसे खत्म हो जाएंगे। हराम कभी टीका नहीं है और हराम कभी टीकेगा नहीं, और अब कोशिश ये करो कि हम इस पेड़ में हराम का माल न जाए। इस पेड़ में हराम जाने के बाद वो आपके आसमान से जरीब हो जाए। अल्लाह शेख ने बताया लिखा है, क्या लिखा कि अगर हराम पेड़ में चला गया, हराम का अगर काबा शरीफ चला गया ना, बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ के भी दुआ करेगा तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, कि वो आसमान से नीचे आ जाता है, कोई ना नहीं रहता। इसलिए हराम का ना खाएं, अल्लाह के वास्ते किसी की मजबूरी करके या कोई और रास्ते से अपनी कमाइयों को हम थोड़ा देखो, हमेशा हलाल थोड़ा होता है और हराम थोक में होता है। हलाल लेकिन हलाल में जो बरकत है उसकी बरकत कोई नहीं, और हराम में बहुत आवाज दी गई, लेकिन किताबों में लिखा है जिसका जिसका हराम माल से पता है उसके लिए अल्लाह ने जहन्नम को बनाया है। तो हम इससे बचे, मुसलमान की नजात को नुकसान पहुंचाए, मुसलमान की माल को नुकसान पहुंचाए और कमाई के लक्ष्यों को हलाल के बनाए, कि कहीं से भी हराम का कोई दुआला हमारे बनना चाहता है तो इंशाल्लाह चाहे तो जिएंगे तो जीना भी मजेगा और औलादों में बरकत हो जाएगी, और मरेंगे तो मरना भी बोलो मजे, जिएंगे तो जीना भी मजेगा और मरेंगे तो मरना भी मजेगा, करोगे इससे भी कर इंशाल्लाह और हम ये करवाई करेंगे। अल्लाह तौफीक दे, सुभान अल्लाह।
الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا عدلا وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله العظيم خلقا وقلبا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قالبا وقلبا أما بعد فيا معشر الإخوان إن من آداب المعاشرة الإسلامية آدابا للقاء والتحية والمصاحبة والمرافقة بالأحبة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليس بالأولى بحق من الآخرة وقال عليه الصلاة والسلام إذا استأذن أحدكم صلاة فلم يؤذن له فليرجع وقال عليه الصلاة والسلام المجالس بالأمانة وقال عليه الصلاة والسلام المرء ولديه خليل فليظلم أحدكم من يخالل وقال عليه الصلاة والسلام إن أوثق أولى الإيمان الحب بالله والبغض بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مليء غفور رؤوف رحيم. الحمد لله ولكم الأحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد الصمد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل ما وعد الله وعبد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين بلا قدر أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله في السر والعلن وحده الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أنكم مجزيون بأعمالكم ومحاسبون على أقوالكم وأقوالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذا وإن الله أمركم بمحكم تنزيله بالصلاة والسلام على رسوله فقال إرشادا لكم وتعليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وارض اللهم عن أرباب الخلفاء الراشدين أولي الفضل الجليل والفضل العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن أبي حمزة والعباس وعن سبتين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعن أمهما فاطمة الزهراء وعن زوجات نبيك الطاهرات أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من قتل المسلمين واقتلنا بفاطمة السعادة أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون.